पहला बाब सेना ईमान का एक उसूल। खुदा अपना कोई भी अजीम काम आपके शख्सी ईमान के वसीले के बगैर नहीं करेगा। ये बात तो आप यकीनी तौर पर समझते हैं कि आपके पास ईमान है, क्योंकि बाइबल बताती है कि खुदा हर किसी को उसके ईमान के मौफिक आजमाता है। आपके पास ईमान मौजूद होता है, चाहे आप उसको महसूस करें या ना करें। आप शायद ईमान को महसूस करने की कोशिश करें, लेकिन जब भी आपको ईमान की ज़रूरत होगी, ईमान मौजूद होगा। वो आपके इस्तेमाल के लिए है, जैसे कि आपके दो बाजू हैं। जब भी आपको उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी, आप सिर्फ अपने बाजुओं को हिलाएंगे और इस्तेमाल करेंगे। मुझे ये बात जानने के लिए कि मेरे दो बाजू हैं, ये महसूस करने की ज़रूरत नहीं कि वो मेरे कंधों पर लटक रहे हैं। बहरहाल, बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे आपका ईमान काम करता है और आपको आसमानी बाप से, जो कि आपके अंदर मौजूद है, मिला देता है। बाइबल हमें बताती है कि ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद है, इससे पहले कि उसे पूरा और मुअस्सर तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। ये ऐसी चीज़ है जिसकी पहले एक नशोनुमा की हालत होती है। सेना, अब आप पूछ सकते हैं, मुझे अपना ईमान काबिले अमल बनाने के लिए किन अनासिर की ज़रूरत है? सेने के अमल में चार बुनियादी चीज़ें हैं। नंबर एक, एक वाज़े मकसद की रोया रखें। सबसे पहले अपने ईमान को इस्तेमाल करने के लिए एक वाज़े मकसद को अपने सामने रखें। ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों, वाज़े चीज़ों का एतमाद है। अगर आप अपने मकसद के बारे में गैर वाज़े हैं, तो फिर आप उस हस्ती से लाताल्लुक़ हैं जो कि दुआओं का जवाब दे सकता है। आपके ईमान का मकसद साफ और वाज़े होना चाहिए। मैंने ये सबक एक नहायत अनोखी सूरत हाल से सीखा। मुझे खिदमत में आए हुए चंद माह गुजर गए थे और मैं इतना गरीब था कि जहाँ तक मादी चीज़ों का ताल्लुक है, मेरे पास कुछ भी ना था। मैं गैर शादीशुदा था और एक छोटे से कमरे में रहता था। मेरे पास ना कोई मेज़, ना कुर्सी और ना ही कोई चारपाई थी। मैं फर्श पर ही खाता, फर्श पर ही सोता और फर्श पर ही पढ़ाई करता, लेकिन रोज़ाना मीलों मील चलता ताकि रूहें बचाने का काम कर सकूं। लेकिन एक दिन मैं बाइबल पढ़ते हुए खुदा के वादों से बेइंतहा मुतासिर हुआ। बाइबल कहती थी कि अगर मैं सिर्फ अपना ईमान मसीह खुदावंद पर रखूं, उसके नाम में दुआ मांगूं, तो मुझे हर चीज़ मिल जाएगी। बाइबल ने मुझे यह भी सिखाया कि मैं खुदा का बेटा हूँ, बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदा का बेटा। लिहाजा मैंने कहा, बाप, बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदा का बेटा क्यों मेज़, कुर्सी और चारपाई के बगैर है और उसे मीलों मील रोज़ाना सफ़र करना पड़ता है? कम से कम मेरे पास एक अच्छा सा मेज़, बैठने के लिए कुर्सी और एक अच्छी सी साइकिल हो, ताकि मैं उस पर घरों में मुलाकात के लिए जा सकूँ। मैंने महसूस किया कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक मैं खुदा से उन चीज़ों को मांग सकता हूँ। मैंने घुटनों के बल दुआ की, बाप, अब मैं दुआ कर रहा हूँ, मेहरबानी से मुझे एक कुर्सी, मेज़ और साइकिल भेज दे। मैंने ईमान रखा और खुदावंद की तारीफ की। उस वक्त से मैं हर चीज़ के लिए, जिसके लिए मैंने दुआ की थी, इंतज़ार करने लगा। एक माह गुजर गया और कोई जवाब न आया। फिर दो माह, तीन, चार, पाँच और छः माह गुजर गए और अभी तक मैं इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर भी कुछ ना हुआ। फिर एक रोज़ जब बारिश हो रही थी, मैं हकीकी तौर पर मायूस हो गया और उस शाम मेरे पास खाने के लिए भी कुछ ना था और मैं सख्त भूखा था। थका मांदा और मायूस होकर मैं शिकवा करने लगा, खुदा, मैंने तुझसे चंद माह पहले एक मेज़, कुर्सी और साइकिल मुहैया करने के लिए कहा था, लेकिन तूने मुझे उनमें से कोई चीज़ भी मुहैया नहीं की। अब तू मुझे देखता है कि मैं इस गुरबत से मारे हुए लोगों के गंदे से इलाके में इंजील की मनादी कर रहा हूँ। मैं उनसे कैसे कहूँ कि वो ईमान का मुजाहरा करें, जबकि मैं खुद भी उसका मुजाहरा नहीं कर सकता हूँ। मैं उनसे कैसे कह सकता हूँ कि वो अपना ईमान खुदा में रखें और रास्ते से कलाम के मुताबिक ज़िंदा रहें, ना कि रोटी पर। मेरे बाप, मैं बहुत मायूस हूँ। मैं इसके बारे में सही तौर पर नहीं जानता। बस मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि मैं खुदा के कलाम का इनकार नहीं कर सकता,
کلام یقیناً سچا ہے اور مجھے کامل یقین ہے کہ تو مجھے جواب دے گا، لیکن اس مرتبہ میں یہ نہیں جانتا کہ کب اور کیسے۔ اگر تو میری دعا کا جواب میرے مرنے کے بعد دے گا تو پھر اس سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اگر تو نے میری دعا کا جواب دینا ہے تو پھر مہربانی سے جلدی کر۔ پھر میں بیٹھ کر رونے لگ پڑا۔ اچانک مجھے سکون سا محسوس ہوا اور میرے ذہن کو سکون کا احساس ہوا۔ جب بھی مجھے اس قسم کا احساس ہوتا ہے، خدا کی حضوری کا احساس، تو وہ ہمیشہ مجھ سے مخاطب ہوتا ہے، لہٰذا میں انتظار کرنے لگا۔ پھر یہ مدھم سی خاموش آواز میرے ذہن پر چھا گئی اور روح نے کہا، میرے بیٹے، میں نے تمہاری دعا بہت عرصے پہلے سن لی تھی۔ فوراً ہی میں بول اٹھا، تو پھر میرا میز، کرسی اور سائیکل کہاں ہیں؟ پھر روح نے کہا، ہاں تم میں بھی اور میرے تمام دوسرے بچوں میں بھی یہی خرابی ہے۔ وہ مجھ سے التجا کرتے ہیں اور ہر قسم کی درخواست مجھ سے مانگتے ہیں، لیکن وہ اس قدر غیر واضح طریقے سے مانگتے ہیں کہ میں جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ درجنوں کی طرح کی میزیں، کرسیاں اور سائیکلیں ہوتی ہیں؟ تم نے تو صرف مجھ سے میز، کرسی اور سائیکل مانگی ہے، تم نے کبھی کوئی خاص میز، کرسی اور سائیکل نہیں مانگی۔ یہ نقطہ میری زندگی میں تبدیلی کا باعث بنا۔ مجھے ان خطوط پر بائبل کالج کے کسی بھی پروفیسر نے نہیں سکھایا تھا۔ میں نے غلطی کی تھی اور یہ میری آنکھیں کھولنے کا باعث بنی۔ میں نے پھر کہا، خداوند، کیا تم واقعی چاہتے ہو کہ میں واضح طور پر دعا کروں؟ اس بار خدا نے میری عبرانیوں 11 باب کھلوانے میں رہنمائی کی۔ ایمان امید کی ہوئی چیزوں، واضح چیزوں کا اعتماد ہے۔ میں نے دوبارہ گھٹنے ٹیک کے اور کہا، باپ، مجھے افسوس ہے، میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے اور میں نے تجھے غلط طور پر سمجھا۔ میں اپنی تمام گزشتہ دعاؤں کو منسوخ کرتا ہوں اور یہ سب کچھ دوبارہ سے شروع کرتا ہوں۔ میں نے میز کا سائز دیا جو کہ فلپائن کی مہاگنی لکڑی سے بنا ہوا ہو۔ میں بہترین قسم کی کرسی چاہتا تھا جو کہ لوہے کے فریم سے بنی ہو اور جن کے کناروں پر رولر لگے ہوں، تاکہ جب بھی میں اس پر بیٹھوں تو اسے جلدی سے ادھر ادھر دھکیل سکوں۔ پھر میں سائیکل تک پہنچا اور میں نے واقعی اس مسئلے پر بہت سوچ و بچار کی، کیونکہ سائیکلیں تو بہت سی قسموں کی تھیں، کورین، جاپانی، فارموسن، جرمن، لیکن ان دنوں میں کوریا یا جاپان کی بنی ہوئی سائیکلیں عام طور پر نہایت نازک ہوا کرتی تھیں۔ میں ایک بہت ہی مضبوط اور قوی ہیکل سی سائیکل چاہتا تھا، اور چونکہ امریکہ میں بنی ہوئی کوئی بھی مشین سب سے بہتر ہوا کرتی تھی، اسی لیے میں نے کہا، باپ، میں امریکہ میں بنی ہوئی سائیکل چاہتا ہوں جس کے اطراف میں گیئر لگے ہوں، تاکہ میں اس کی رفتار کو بھی قابو میں کر سکوں۔ میں نے ان چیزوں کے لیے اتنے صاف اور واضح الفاظ میں کہا کہ خدا ان کے مہیا کرنے میں کبھی غلطی نہ کر سکتا تھا۔ پھر میں نے محسوس کیا جیسے ایمان میرے دل سے بہتے ہوئے باہر نکل رہا ہو۔ میں خداوند میں شادمانی منا رہا تھا۔ اس رات میں ایک بچے کی مانند سویا۔ پھر جب میں دوسری صبح 4:30 بجے اٹھا تاکہ صبح کی دعا کی تیاری کر سکوں، تو مجھے اچانک معلوم ہوا کہ میرا دل خالی ہے۔ پچھلی شام تمام دنیا کا ایمان میرے پاس تھا، لیکن جب میں سو رہا تھا تو ایمان پر لگا کر مجھے چھوڑ گیا۔ میں اپنے دل میں کچھ بھی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا، باپ، یہ تو بہت افسوسناک بات ہے۔ ایمان رکھنا تو ایک بات ہے، لیکن یہ انتہائی مختلف بات ہے کہ میں اس ایمان پر قائم رہوں جب تک تیرا جواب نہیں مل جاتا۔ یہ ایک ایسی پریشانی ہے جو تمام مسیحوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ کوئی خاص مہمان واز کرتا ہے، جب وہ ان کو کلام سناتا ہے تو وہ ایمان سے بھر جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھروں تک پہنچے وہ تمام ایمان کھو بیٹھتے ہیں، ان کا ایمان پر لگا کر اڑ جاتا ہے۔ اس صبح کو جب میں بائبل پڑھ رہا تھا اور کوئی خاص کلام ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اس پر کلام سناؤں، اچانک میری نگاہیں رومیو 4:17 پر پڑی، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ میرا دل اس کلام پر فریفتہ ہو گیا اور یہ میرے دل میں جوش پیدا کرنے لگ پڑا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، میں بھی شاید اس طرح سے ان چیزوں کو جو کہ نہیں ہیں ایسے بلا لوں جیسے کہ وہ ہیں، جیسے کہ وہ پہلے سے میرے پاس موجود ہیں۔ مجھے اس مشکل کا حل مل گیا تھا کہ ایمان کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے۔ میں جلدی سے اپنے خیمائی چرچ کی جانب گیا जहां लोग पहले ही से दुआ का आगाज कर बैठे थे। और कुछ गीत गाने के बाद मैंने कलाम सुनाना शुरू किया। मैंने इस कलाम की तफसीर की और फिर कहा, लोगों खुदाउन के फ़दल से मेरे पास एक मेज़ है जो कि फिलपानी महागनी लकड़ी से बना हुआ है। एक खूबसूरत कुर्सी है जिसका फ्रेम लोहे का है, जिसके किनारों पर रोलर लगे हुए हैं, और एक साइकिल है जो कि अमरीका में बनी हुई है और जिसके इतराफ में गेयर लगे हैं। खुदाउन की तारीफ हो, मुझे ये तमाम चीज़ें मिल गई हैं। लोग एकदम हैरान हो गए क्योंकि वो जानते थे कि मैं तो मुकम्मल तौर पर गुर्बत का मारा हुआ हूँ। मैं चीज़ों के बारे में शेखी बिगाड़ रहा था और उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं ईमान में यकीनन खुदावन की तारीफ कर रहा था, सिर्फ वही कर रहा था जैसे कि खुदा के कलाम ने मुझे करने को कहा। इबादत के बाद जैसे ही मैं बाहर निकल रहा था, तीन नौजवान शख्स मेरे पीछे आए और कहने लगे, पास्टर साहब, हम उन चीज़ों को देखना चाहते हैं। मैं हैरान और खौफजदा हो गया क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मुझे उन चीज़ों को दिखाना भी पड़ेगा। ये लोग एक गंदी जगह पर रह रहे थे और अगर एक बार उन्हें पता चल गया कि मैंने झूठ बोला है तो ये मेरा यहाँ पर खिदमत का आखिर होगा, वो कभी वापस नहीं आएंगे। मैं एक खौफनाक सूरत हाल से दो चार था, लिहाजा मैंने खुदा से दुआ मांगना शुरू कर दी। खुदावंद, शुरू से ही ये मेरा मंसूबा नहीं था, ये तेरा ही मंसूबा था कि मैं इस तरह से कहूँ, मैंने सिर्फ तेरी ताबेदारी की है और अब मैं एक इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल से दोचार हूँ। मैंने ऐसे कहा था जैसे कि मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं और अब मैं ये कैसे समझाऊँ, तूने हर मरतबा मेरी मदद करनी है। फिर खुदावंद आया और उसने मेरी मदद की और मेरे दिल से ये ख्याल निकला। मैंने कहा, तुम यहाँ मेरे कमरे में आओ और देखो। वो सब आए और इधर उधर मेज़, कुर्सी और साइकिल को तलाश करने लगे। मैंने कहा, इधर उधर मत देखो, मैं तुमको बाद में दिखाऊंगा। मैंने मिस्टर पार्क की तरफ इशारा किया जो कि इन दिनों कोरिया के सबसे बड़े असेंबलीज ऑफ गॉड के चर्च का पास्टर है, और मैंने कहा, मैं तुमसे चंद सवाल पूछूंगा, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दे सके तो मैं तुम्हें ये तमाम चीज़ें दिखा दूंगा। तुम कितने अरसे तक इस दुनिया में आने से पहले अपनी माँ के पेट में रहे? उसने अपने सर को खुजाते हुए कहा, 9 माह। फिर मैंने पूछा, तुम 9 माह तक अपनी माँ के पेट में क्या करते रहे? ओह, मैं नशोनुमा पा रहा था। मैंने कहा, लेकिन तुम्हें किसी ने भी नहीं देखा था। मुझे इसलिए कोई ना देख सका क्योंकि मैं अपनी माँ के अंदर था। फिर मैंने कहा, तुम अपनी माँ के पेट के अंदर भी उसी कदर बच्चे थे जिस कदर तुम दुनिया में पैदा होने के बाद थे। तुमने मुझे सही जवाब दिया है। गुज़िश्ता शाम मैंने यहाँ घुटने टेक कर मेज़, कुर्सी और साइकिल के लिए दुआ की और हुर्क उसकी कुदरत से मैं मेज़, कुर्सी और साइकिल से हामला हुआ। ऐसा है कि अब वो मेरे अंदर हैं और अभी नशोनुमा पा रहे हैं। वो उसी तरह से मेज़, कुर्सी और साइकिल हैं जिस तरह वो अपनी पैदाइश पर लोगों को नज़र आएंगे। उन्होंने हंसना शुरू कर दिया और कहा, यह पहला मौका है कि हमने कभी किसी आदमी को मेज़, कुर्सी और साइकिल से हमला देखा है। मेरे कमरे से बाहर निकलने के बाद उन्होंने ये अफवाह सारे कस्बे में फैलाना शुरू कर दी कि पास्टर साहब मेज़, कुर्सी और साइकिल से हमला था। मैं बमुश्किल इस कस्बे से गुजर सकता था क्योंकि औरतें इकट्ठी होकर मुझे देखती और मजाक उड़ाती। शरारती नौजवान अतवार को मेरे पास आते, मेरे पेट को हाथ लगाते हुए कहते, पास्टर साहब, तुम कितने बड़े होते जा रहे हो। लेकिन उन तमाम दिनों में मुझे मालूम था कि वो तमाम चीज़ें मेरे अंदर नशोनुमा पा रही हैं। उसे सिर्फ कुछ वक्त दरकार है, जैसा कि एक माँ को बच्चा जनने में कुछ वक्त लगता है, इसी तरह से आपके लिए भी वक्त दरकार है क्योंकि आप वाज़े मंसूबों से हामला हो जाते हैं। मैं खुदा उनकी तारीफ कर रहा था और यकीन के साथ कर रहा था। जब वक्त आया तो मेरे पास इन चीज़ों में से हर एक मौजूद थी। एक मेज़ जो कि फिलिपिनी महागनी लकड़ी का बना हुआ था, एक कुर्सी जो कि जापानी मित्सुबिशी कंपनी की बनी हुई थी जिसके किनारों पर रोलर थे ताकि जब मैं उस पर बैठूं तो इधर उधर घूम सकूं, और थोड़ी सी इस्तेमाल शुदा साइकिल जिसके इतराफ में गेयर लगे थे एक अमरीकी मिशनरी के बेटे ने मुझे दी। मैं इस मेज़, कुर्सी और साइकिल को अपने घर में लाया और मेरे दुआ के अंदाज में मुकम्मल तब्दीली आ गई। उस वक्त से पहले मैं हमेशा गैर वाज़े अल्फाज में दुआ किया करता था, लेकिन उस वक्त से आज तक मैंने कभी गैर वाज़े अल्फाज में दुआ नहीं की है। अगर खुदा आपकी गैर वाज़े दुआ का जवाब दे दे तो आपको कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि आपकी दुआ का खुदा ने जवाब दे दिया है। ज़रूरी है कि आप वाज़े और साफ तौर पर मांगें। खुदा कभी भी गैर वाज़े दुआओं को पसंद नहीं करता। जब तुमाई का बेटा अंधा बरतमाई मसीह खुदावन के पीछे भागता हुआ आया तो चला चला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। अगरचे हर एक को ये मालूम था कि बरतमाई अपने अंधेपन से शिफा चाहता है, फिर भी मसीह खुदावन ने पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे वास्ते करूँ? मसीह खुदावन कतई वाज़े दरख्वास्तें चाहता है। बरतमाई ने जवाब दिया, जनाब मैं देखना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने जवाब दिया, जैसा तुम्हारा ईमान है वैसा कर दिया जाएगा। बरतमाई ने अपनी आंखें खोली, लेकिन इससे पहले कि वो अपने अंधेपन के लिए शिफा वाजे तौर पर मांगता, मसीह खुदावंद ने शिफा के लिए नहीं कहा, जब आप अपनी मुनाजात खुदावंद के हुजूर लाते हैं तो वाजे दरख्वास्त के साथ आएं, जिनके यकीनी और ख़ास मकासद हों। एक दफ़ा जब मैं एक चर्च में पास्टर साहब से मिल रहा था तो उसकी बीवी ने मुझे पास्टर के दफ्तर में आने की दावत दी। पास्टर साहब ने कहा, चू क्या आप मेहरबानी से यहाँ मौजूद औरत के लिए दुआ करेंगे? मैंने पूछा, किस बात के लिए? दरअसल वो शादी करना चाहती है और उसे अभी तक शोहर नहीं मिला, उसे अंदर आने के लिए कहें। लिहाजा वो अंदर आई। वो एक खुश शक्ल कंवारी थी जो कि 30 साल से जायद उम्र की थी। मैंने उससे पूछा, बहन आप कितनी मुदत से शोहर के लिए दुआ कर रही हैं? उसने जवाब दिया, 10 साल से भी जायद अरसे से। मैंने पूछा, तो फिर इस 10 से भी ज़ायद अरसे में खुदा ने आपकी दुआ का जवाब क्यों नहीं दिया है? आप किस किस्म के शोहर के लिए दुआ मांगती रही हैं? उसने कंधे उचकाते हुए कहा, बहरहाल ये तो खुदा पर मुनहसर है, खुदा सब कुछ जानता है। ये आपकी गलती है, खुदा खुद से काम नहीं करता बल्कि सिर्फ आपके वसीले से काम करता है। खुदा अब्दी मंबा है, लेकिन वो सिर्फ आपकी दरख्वास्तों के वसीले से काम करता है। क्या आप सचमुच ये चाहती हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूं? हाँ, तो ठीक है, मुझे एक सफ़ेद कागज़ और पेंसिल ला दो और मेरे सामने बैठ जाओ। वो बैठ गई और मैंने कहा, अगर तुम मेरे सवालात के जवाबात लिख दो तो फिर मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। नंबर एक, अब तुम्हें सचमुच एक शोहर चाहिए, लेकिन तुम किस किस्म का शोहर चाहती हो? एशियाई, सफ़ेद या काला? सफ़ेद, तो फिर ठीक से इसे लिख दो। नंबर दो, क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा शोहर इतना लंबा हो जितना 6 फुट है या इतना छोटा हो जितना 5 फुट है? ओ, मैं एक लंबा शोहर चाहती हूँ, उसे लिख दो। नंबर तीन, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा शोहर दुबला पतला और खुश शक्ल हो या सिर्फ मोटा और दिलकश हो? मैं चाहती हूँ कि वो दुबला पतला हो, दुबला पतला लिख दो। नंबर चार, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा शोहर क्या मशगला रखता हो? मेरे ख्याल में मौसीकी का शौक रखता हो। अच्छा, तो फिर ठीक है, लिख दो, मौसीकी का शौकीन हो। नंबर पाँच, तुम कैसी नौकरी चाहती हो कि तुम्हारा शोहर रखता हो? स्कूलों में पढ़ाता हो। अच्छा, तो फिर ठीक है, लिख दो, स्कूल में पढ़ाता हो। मैंने उसे 10 नुकात लिखवाए और फिर कहा, मेहरबानी से अपनी लिस्ट को बुलंद आवाज़ से पढ़ें। और उसने 1 से 10 नुकात तक बुलंद आवाज़ में पढ़ दिए। फिर मैंने कहा, अपनी आंखें बंद करो, क्या अब तुम अपने शोहर को देख सकती हो? हाँ, मैं उसे वाजे तौर पर देख सकती हूँ। अच्छा, तो फिर ठीक है, आए अब हम उसे हुक्म दें। जब तक कि तुम अपने तखय्युल में साफ तौर पर अपने शोहर को देख नहीं लेती, तुम उसे हुक्म नहीं दे सकती, क्योंकि खुदा भी जवाब नहीं देगा। इससे पहले कि तुम दुआ शुरू करो, तुम्हें साफ तौर पर उसे अपने सामने देखना चाहिए। खुदा कभी भी गैर वाजे दुआओं के जवाब नहीं देता। लिहाजा उसने घुटने टेके और मैंने उस पर हाथ रख कर कहा, ऐ खुदा, अब ये अपने शोहर को जानती है, मैंने उसके शोहर को देखा है, तुम उसके शोहर को जानते हो, हम उसे मसीह यीशु के नाम में हुक्म देते हैं। बहन, इस लिखे हुए कागज़ को अपने घर ले जाएं और उसे एक आईना पर चस्पा करें। हर शाम आप सोने से पहले उन 10 नकात को बुलंद आवाज से पढ़ें और हर सुबह जब आप उठें ऊँची आवाज़ में उन 10 नकात को पढ़ें और जो आपके लिए खुदावंद की सताइश करें। 1 साल बीत गया और जब मैं दोबारा उस जगह से गुजर रहा था तो पास्टर की बीवी ने मुझसे फ़ोन पर कहा, पास्टर साहब, क्या आप दोपहर का खाना हमारे साथ खाएंगे? यकीनन मैं खाऊंगा। लिहाजा मैं दोपहर के खाने के लिए गया। जैसे ही मैं होटल में पहुंचा, उसने कहा, ओ, उसकी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई। किसकी शादी हो गई? क्या आपको वो लड़की याद है जिसके लिए आपने दुआ की थी? आपने उससे 10 नुकात लिखने के लिए कहा था, उसकी शादी हो गई है। हाँ, अब मुझे याद आया,
क्या हुआ था?
उसी गर्मियों में चर्च में एक हाई स्कूल का मौसीकी का उस्ताद अपने सास के हमरा आया, जो कि एक हफ्ते तक चर्च में रहते हुए मौसीकी के जरिए बेदारी लाता रहा। वो एक कंवारा शख्स था और तमाम नौजवान लड़कियां उस पर फरीफ्ता थीं और उससे मिलना चाहती थीं, लेकिन ये शख्स नौजवान लड़कियों से बेपरवाह था। बहरहाल वो इस कदरे उधेड़ उम्र कंवारी का बहुत गर्वीदा था। वो हमेशा उसके इर्द गिर्द मंडलाता रहा और जाने से पहले उसने उससे शादी की दरख्वास्त की। आखिरकार ज्यादा हिचकिचाहट के बगैर उसने हाँ कर दी। वो बहुत खुशी से उस चर्च में ब्याहे गए और उनकी शादी के दिन उसकी माँ ने आईने से वो कागज़ उतारा जिस पर वो 10 नुकात लिखे थे और उसे अवाम के सामने पढ़ा और फिर फाड़ दिया। ये एक कहानी महसूस होती है, लेकिन हकीकतन ऐसा होता है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदा आपके अंदर है। खुदा आपकी ज़िंदगी से मुतल्लिका कामों को कभी भी आपकी मर्जी के बगैर नहीं करता। खुदा तो सिर्फ आपकी सोचों और ईमान के जरिए ही काम करता है। लिहाजा जब भी आप खुदा से जवाब मांगना चाहें तो वाज़े मकसद और नस्बुलैन सामने रखें। ऐसा मत कहें, ऐ खुदा मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में कितनी बरकत है? 8,000 वादों से भी ज़्यादा। अगर आप कहें ऐ खुदा मुझे बरकत दे, तो फिर खुदा आपसे पूछ सकता है आप 8,000 से भी ज़ायद वादों में से किस किस्म की बरकत चाहते हैं। इसलिए नहायत वाज़े तौर पर मांगें, अपनी नोटबुक निकालें, उस पर लिखें और उसे वाज़े तौर पर देखें। मैं हमेशा खुदा से एक वाज़े तादाद में अपनी कलीसिया के लिए बेदारी मांगता हूँ। 1960 में मैंने दुआ करना शुरू की, खुदा हमें हर साल 1,000 नए रुकन दे, और 1969 तक हर साल मेरी कलीसिया में 1,000 अरकान का इजाफा होता गया। लेकिन 1969 में मैंने अपने जहन और ख्यालात को तब्दील कर दिया। अगर खुदा मुझे 1,000 रुकन हर साल दे सकता है, फिर क्यों ना मैं खुदा से 1,000 रुकन हर माह देने के लिए कहूँ। लिहाजा 1970 से मैंने ये दुआ करना शुरू कर दी, बाप हमें 1,000 रुकन हर माह दे। पहले पहल खुदा ने 600 दिए, फिर खुदा ने हर माह 1,000 से भी ज़ायद देना शुरू कर दिया। पिछले साल हमारी कलीसिया में 12,000 से भी ज़ायद रुकन शामिल हुए। इस साल मैंने अपना हदफ और बढ़ा दिया है और अब हम 15,000 से भी ज़ायद रुकन हासिल करेंगे। अगले साल मैं आसानी से 20,000 अरकान के लिए मांग सकूंगा। अगर आपकी दरख्वास्त वाज़े है और अगर आप उसे यकीनी तौर पर देखते हैं, तो फिर आप उसे हासिल कर लेंगे। जब मैं मौजूदा चर्च के ढांचे को बना रहा था, जिसमें 10,000 नशिस्तें हैं, इससे भी पहले कि इसमें बजरी वगैरह डाली जाती, मैंने उसे वाज़े तौर पर अपने तखय्युल में देखा। मैंने सैकड़ों मरतबा चर्च की इमारत में चहलकदमी की और वहाँ मैंने रूल कुद्स की बेशबहा हुजूरी को महसूस किया। मैंने उस चर्च की वसत को महसूस किया। मेरा दिल जज्बात से भर गया। आपको अपने मकासिद इस कदर वाज़े और ख़ास तौर पर देखने चाहिए कि आप उन्हें हकीकतन अपने जज्बात में महसूस करें। अगर आप ईमान के इस उसूल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर आप यकीनन कभी भी अपनी किसी भी दरख्वास्त का जवाब ना पा सकेंगे। मैं अब अपनी दुआओं में हमेशा साफ तौर पर देखने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने मकासिद को इस कदर वाज़े देखना चाहता हूँ कि मैं अपने दिल में एक तहरीक सी महसूस करता हूँ, फिर तब ही ये पहली हालत पूरी होती है।
नंबर 2, एक जलती हुई ख्वाहिश रखें। अगर आप एक वाज़े तस्वीर रखते हैं, तो इन मकासिद के लिए आपको जलती हुई ख्वाहिशात रखनी पड़ेंगी। बहुत से लोग यूं ही दुआ करते हैं, खुदा मेरी दुआ का जवाब देगा, और इससे पहले कि वो चर्च से बाहर निकलें, जिन चीज़ों के लिए उन्होंने दुआ मांगनी होती है वो भूल चुके होते हैं। इस किस्म का रवैया कभी भी ईमान और खुदा के साथ राबता पैदा नहीं कर सकता। आपको एक जलती हुई ख्वाहिश की ज़रूरत है। अमसाल 10 बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है, सादिकों की मुराद पूरी होगी। जबूर 37 उसकी 4थी आयत में लिखा है, खुदावन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। किसी भी मकसद के लिए आपको जलती हुई ख्वाहिश रखनी चाहिए और आपको लाजमन उस मकसद को पूरा होते हुए देखते रहना चाहिए। जब मैंने 1958 में अपनी खिदमत का आगाज किया, तो मेरे जहन में एक जलती हुई ख्वाहिश थी, एक दहकता हुआ मकसद कि मैं कोरिया का सबसे बड़ा चर्च तामीर करूं। वो ख्वाहिश मुझ में इस कदर जल रही थी कि मैं उसके साथ जिंदा रह रहा था
उसके साथ सो रहा था और उसके साथ चल रहा था। अब 20 सालों के बाद ये कहा जाता है कि मेरा चर्च दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है।
आपको अपने दिल में ये जलती हुई ख्वाहिश रखनी होगी। अगर आप जलती हुई ख्वाहिश नहीं रखते, फिर इंतज़ार करें और खुदा से कहें कि वो अपनी ख्वाहिश आपके दिल में उंडेल दे। खुदा को नीम गर्म नहीं पसंद, क्योंकि वो सिर्फ देखते हुओं को ही महारत बख्शता है। अगर आप वो देखती हुई ख्वाहिश रखते हैं, फिर आप नतायज हासिल करेंगे। नंबर 3, यकीन दहानी के लिए दुआ करें। आपके पास यकीन दहानी होनी चाहिए।
यकीन दहानी यूनानी जबान में होपोस्टासिस है,
HOPOSTASIS। अंग्रेजी जबान में इसका तर्जमा कानूनी दस्तावेजें कहा जा सकता है। जब आपके पास एक वाज़े मकसद हो और ये ख्वाहिश आपके दिल में नुक्ता जोश तक जल रही हो, फिर आपको घुटने टेक कर दुआ करना चाहिए, जब तक कि आपको एतकाद और यकीन दहानी नहीं मिल जाती। जब मैं हवाई में इबादत ले रहा था, एक जापानी औरत आई और मुझसे पूछने लगी कि उसे यकीन दहानी हासिल करने के लिए कितनी देर तक दुआ करनी चाहिए। मैंने उसे बताया कि कभी तो सिर्फ एक मिनट लेती है, और अगर इस लम्हे में उसके दिल में इत्मीनान और यकीन दहानी आ जाए तो फिर से और दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने उसे बताया कभी ये 2 मिनट, 2 घंटे, 2 हफ्ते, 2 माह या 2 साल भी ले सकती है, लेकिन वक्त की मियाद जितनी भी हो, तुम्हें उस वक्त तक दुआ करनी है जब तक तुम्हें यह एतमाद नहीं मिल जाता। मगरबी लोग इस मुश्किल में फंसे हुए हैं कि वो अक्सर अपनी ज़िंदगी मंसूबों के मुताबिक गुजारना चाहते हैं। हर चीज़ में जल्दी 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 जल्द ही वो अपने ख़ानदान और दोस्तों से मुलाकात के लिए वक्त की कमी का शिकार हो जाते हैं, और यहाँ तक कि उनके पास खुदा से जवाब लेने के लिए भी वक्त नहीं होता। हर एक चीज़ फिलफोर महसूस होती है। फौरी नाश्ता, टीवी, ताम, जल्द खाना मुहैया करने वाले काउंटर, सब कुछ 5 मिनट में तैयार हो जाता है। लिहाजा चर्च जाते हुए वो शायद इस तरह से दुआ करते होंगे, ऐ खुदा मुझे जवाब दे, मेरे पास कोई वक्त नहीं है, सिर्फ 5 मिनट हैं, और अगर तुम मुझे जल्द जवाब नहीं दोगे तो फिर सब कुछ भुला दो। वो खुदा के जवाब का इंतज़ार नहीं करते हैं। अमरीकियों ने अक्सर चर्चों को तवील तफरी की जगह में तब्दील कर दिया है। कोरिया में हमने उन तमाम तफरीहात से छुटकारा हासिल कर लिया है। हम अपने ऐलानात नहायत मुख्तसर करते हैं ताकि खुदावंद के कलाम को अफजलियत दी जा सके। खुदावंद का कलाम सुनाने के बाद हम 2 या 3 ख़ास बातें करते हैं और फिर हम ख़त्म कर देते हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम सबसे अहम होता है। मुझे एलाबामा के एक चर्च में शाम की इबादत में कलाम सुनाने के लिए बुलाया गया। इबादत 7 बजे शुरू हुई। ऐलानात और मौसीकी के इब्तदाइये में तकरीबन 2 घंटे लग गए। वहाँ यूं ही बैठे हुए मुझे नींद आने लगी। लोग भी थकावट महसूस करने लग पड़े और पास्टर साहब मेरे पास आए और कहा, चू आज रात मेहरबानी से सिर्फ 10 मिनट कलाम सुनाना। आज रात हमारे यहाँ टेलीविज़न पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ 10 मिनट में कलाम सुनाएं। मैं इस दावत की वजह से कोरिया से तमाम रास्ता तय करके आया था ताकि इस शाम सिर्फ 10 मिनट कलाम सुनाऊं। ऐसे चर्च में आप खुदा की मुकम्मल बरकात हासिल नहीं कर सकते हैं। चर्च में इस बात की ज़रूरत है कि खुदा के जवाब के लिए एक तवील अरसे तक इंतज़ार करें, उसकी तारीफ़ करें, उसके साथ साथ खुदा के कलाम की ठोस तालीम दी जाए जो कि ईमान को तामीर करती है। और जब तक आपको यकीन दहानी नहीं हो जाती, खुदा के जवाब का इंतज़ार करना चाहिए। जब हमें अपने चर्च की तामीर के लिए $5 मिलियन की ज़रूरत थी, जो कि ठेके पर भी दिया जा चुका था, तो मेरे सामने एक वाज़े रोया थी, एक वाज़े मकसद था, और ये जलती हुई ख्वाहिश थी कि इस चर्च को तामीर करूं जिसमें 10,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश हो। लेकिन मेरा दिल खौफ से भरा हुआ था,
मतजबजब और खौफ ज़दा था,
और मुझे कोई यकीन दहानी ना थी। मैं एक खौफ ज़दा खरगोश की मानिंद था, और वो $5 मिलियन मुझे कोहे एवरेस्ट दिखाई देते थे। किसी अमीर गैर मुल्की को $1 मिलियन निस्बतन कम लग सकते हैं, लेकिन कोरियन के लिए $1 मिलियन के मानी बहुत बड़ी रकम के हैं। लिहाजा मैंने मरते हुए शख्स की मानिंद दुआ करना शुरू कर दी। मैंने कहा, खुदावंद अब उन्होंने काम शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक मुझे कोई यकीन दहानी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि ये तमाम रकम हम कहाँ से हासिल करेंगे। मैंने जदोजहद करना शुरू कर दी। 1 माह गुजर गया और अभी तक मुझे कोई इत्मीनान और यकीन दहानी ना मिली। 2रा माह भी गुजर गया और मैं रातों के वस्त में दुआ कर रहा था। मैं बिस्तर से बाहर निकल जाता और कोने में जाकर रोता और अपने दिल की पुकार बाहर निकालता। मेरी बीवी सोच रही थी कि मैं अपने हवास खो रहा हूँ, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर अंधा था। मैं यूं ही खड़ा हो जाता और बिला सोचे समझे $5 मिलियन के लिए परेशान हो जाता। जब मैं इसी तरह से लगातार 3 माह तक दुआ कर चुका तो एक सुबह मेरी बीवी ने कहा, जनाब नाश्ता तैयार है। जैसे ही मैं अपनी स्टडी से बाहर निकल रहा था और कुर्सी पर बैठने ही को था कि अचानक आसमान खुल गया और खुदा की अजीम बरकत मेरे दिल में उतर आई, और ये अजीम कानूनी दस्तावेज़ एतकाद और यकीन दहानी मेरे जहन पर जाहिर कर दी गई। अचानक मैं अपनी कुर्सी से गोली की मानिंद उछल पड़ा और चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे मिल गए हैं, मुझे मिल गए हैं, ओ मुझे मिल गए हैं। मेरी बीवी जल्दी से बावर्ची खाने से भागती हुई आई, और जब मैंने उसकी जानिब निगाह की तो मैंने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल जर्द था। वो खौफजदा थी और मुझे पकड़ते हुए उसने कहा, तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम ठीक हो, बैठ जाओ। मैंने जवाब दिया, मुझे मिल गए हैं। तुम्हें क्या मिल गए हैं? मुझे $5 मिलियन मिल गए हैं, मैंने जोर देकर कहा। फिर उसने कहा, अब तुम यकीनन पागल हो गए हो, यकीनन पागल। लेकिन मोहतरमा, ये तमाम $5 बिलियन तो मेरे अंदर मौजूद हैं, अब वो नशोनुमा पा रहे हैं, ओह वो मेरे अंदर बढ़ रहे हैं। अचानक वो $5 बिलियन मेरी हथेली पर एक छोटे पत्थर में तब्दील हो गए हैं। मैंने यकीन दहानी के साथ दुआ की, मेरा ईमान बढ़ गया और मैंने वो $5 मिलियन मजबूती से थाम लिए। वो मेरे थे, मुझे एतकाद मिल गया था। और जब एक बार आपको एतकाद मिल जाए, कानूनी दस्तावेजात, चाहे आप उन चीज़ों को देखें या ना देखें, कानूनी तौर पर वो चीज़ें आप तक आकर रहेंगी, क्योंकि कानूनी तौर पर वो चीज़ें आपकी हैं। लिहाजा जब तक आपको यकीन दहानी ना मिल जाए, दुआ करते रहिए। उस साल के इब्तदाई हिस्से में मैं दुआ करता रहा और खुदा ने मुझे मेरे चर्च के लिए कुल 50,000 अरकान की यकीन दहानी दी, इसलिए मैंने उसे कबूल कर लिया और मैं अपने दिल में 1.5 लाख अरकान देखता हूँ। वो अरकान मेरे अंदर हैं, नशोनुमा पा रहे हैं, और जैसे जैसे मेरे अंदर रोया नशोनुमा पाते जाएंगे, वही बाहर भी नशोनुमा पाते जाएंगे। यही वो भेद है। दुआ करें जब तक आपको एतकाद और यकीन दहानी मिल नहीं जाती। चौथी बात, कलाम को बोलें। आपको अपने ईमान का सबूत देना है। बाइबल बताती है कि खुदा मुर्दे जिंदा करता था। इसके मानी है कि खुदा मौजज़ात करता था, जो चीज़ें नहीं हैं उनको ऐसे बुला लेता है जैसे कि वो हैं। इब्राहिम 100 वर्ष का था और सारा 90 वर्ष की थी। उनके सामने एक वाज़े मकसद था, बेटा हासिल करना। उस बेटे को हासिल करने के लिए उनके दिल में जलती हुई ख्वाहिश थी। उन्होंने 24 साल तक दुआ की। आखिरकार खुदा ने उनके साथ वादा किया और जब उन्हें यकीन दहानी मिल गई, खुदा ने फौरन उनके नाम तब्दील कर दिए। तू फिर इब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, बहुत सी कौमों का बाप, और तू अपनी बीवी को सारी नहीं कहेगा बल्कि सारा शहजादी। इब्राहिम ने खुदा से एहतजाज किया, बाप लोग हम पर हंसेंगे, हमारे घर में तो कुत्ते का बच्चा नहीं है, और तुम ये चाहते हो कि हम अपने नाम बहुत सी कौमों का बाप और शहजादी में तब्दील कर लें, शहर के तमाम लोग हमें पागल कहेंगे। खुदा ने शायद ये कहा हो, अगर तुम कभी भी मेरे साथ काम करना चाहते हो तो तुम्हें भी ऐसा करना होगा जैसा कि मैं करता हूँ। मैं उन चीज़ों को जो कि नहीं हैं ऐसे बुला लेता हूँ जैसे कि वो हैं, और अगर तुम दिलेरी से ऐसा नहीं कर सकते कि तुम्हारे पास वो पहले ही से मौजूद हैं जो कि अभी नहीं हैं, फिर तुम मेरी किस्म में शामिल नहीं हो सकते। लिहाजा इब्राहिम ने अपना नाम तब्दील कर लिया। वो अपनी बीवी के पास आया और कहा, प्यारी बीवी, अब मेरा नाम तब्दील हो गया है, अब से मैं इब्राहिम नहीं बल्कि इब्राहिम बहुत सी कौमों का बाप हूँ, क्योंकि खुदा ने मेरा नाम तब्दील कर दिया है। तुम्हारा नाम अब से सारी नहीं बल्कि सारा है। शाम हुई और इब्राहिम ऊर की वादी में चल रहा था। सारा ने खाना तैयार किया और उसने अपने शोहर को पुकारा, इब्राहिम रात का खाना तैयार है। ये जुमले तमाम वादी में गूंजते रहे। गांव के लोगों ने अपना काम रोक दिया। इमकाने गालिब है, उन्होंने कहा, सुनो वो अपने शोहर को इब्राहिम बहुत सी कौमों का बाप पुकार रही है। ओह बेचारी सारी, वो इतनी शिद्दत से बच्चे की ख्वाहिश रखती है कि 90 साल की उम्र में उसने अपने शोहर को बहुत सी कौमों का बाप कहना शुरू कर दिया है। उसका दिमाग चल गया है, हमें इसके लिए अफसोस है। फिर अचानक उन्होंने वादी में से एक बुलंद दरमियानी आवाज़ सुनी, सारा मैं आ रहा हूँ। क्या? गालिबन वो बुड़बुड़ाए, सारा शहजादी बहुत से बच्चों की माँ। इसका भी यही हाल है, दोनों पागल हो गए। लेकिन इब्राहिम और सारा ने गांव के लोगों की नुक्ताचीनी को नज़रअंदाज कर दिया। वो एक दूसरे से कहते, बहुत सी कौमों का बाप और शहजादी, और हकीकतन जैसा वो एक दूसरे को कहते थे
اور حقیقتاً جیسا وہ اقرار کرتے تھے ان کے ہاں ایک خوبصورت بچہ اسحاق پیدا ہوا جس کے معنی ہیں مسکراہٹ۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ ایک مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے گھروں میں مسکراہٹیں چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے کاروبار اور کلیسیا میں مسکراہٹیں چاہتے ہیں؟ ایمان کا اصول استعمال کریں تو پھر آپ اپنی زندگی میں بار بار اسحاق کی پیدائش کو دیکھیں گے۔ معجزات اندھوں کی طرح جدوجہد کرنے سے نہیں ہوتے، روحانی میدان میں بھی اصول ہیں۔ خدا آپ کے اندر سکونت پذیر ہے، لیکن خدا آپ کی زندگی کے وسیلے کے بغیر آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ خدا اعظم چیزیں حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کرے گا۔ خدا یکساں ہے کیونکہ یہوہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، لیکن کسی شخص کے تبدیل ہونے سے پہلے خدا اپنا آپ اس پر ظاہر نہیں کر سکتا۔ خدا نے موسیٰ اور یشوا کو اور بھی عظیم ایمان والے لوگوں کو استعمال کیا۔ جب وہ گزر گئے اور لوگ برگشتہ ہونا شروع ہو گئے تو خدا نے بھی اپنی قوت کا اظہار بند کر دیا۔ خدا آج آپ کے وسیلے سے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، ویسے ہی جیسے 2000 برس پہلے اس نے اپنے آپ کو مسیح خداوند کے ذریعے ظاہر کیا تھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی طاقتور ہے جیسا کہ پہلے تھا، وہ صرف آپ پر انحصار کر رہا ہے۔ میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں بڑی آسانی کے ساتھ امریکہ، جرمنی یا ٹوکیو میں کلیسیا بنا سکتا ہوں جس کے اراکین کی تعداد 10,000 سے بھی زائد ہو، کیونکہ کلیسیا کی رویا باہر کی دنیا میں نہیں بنائی جاتی بلکہ کسی آدمی یا عورت کے اندر بنائی جاتی ہے۔ جو کچھ بھی آپ کے دل اور دماغ میں حاملہ ہوگا وہی آپ کے حالات میں ظاہر ہوگا۔ اپنے دل اور دماغ کی کسی بھی چیز سے زیادہ نگہبانی کریں، کسی اور شخص کے ذریعے خدا کا جواب حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ خدا کا جواب آپ کی روح میں آتا ہے اور آپ کی روح کے وسیلے سے آپ کے حالات میں ظاہر ہوتا ہے۔ یقین دہانی کے الفاظ حاصل کریں اور انہیں کہیں، کیونکہ حقیقتاً آپ کے الفاظ باہر نکلتے ہیں اور تخلیق کرتے ہیں۔ خدا نے کہا اور تمام دنیا وجود میں آ گئی۔ آپ کا کلمہ وہ خام مال ہے جس کو روح القدس تخلیق کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اس لیے کلام کہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ آج کی کلیسیا نے حکم دینے کا فن کھو دیا ہے۔ ہم مسیحی دائمی بھکاری بنتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم مسلسل مانگتے رہتے ہیں۔ موسیٰ نے بحر کلزم کے کنارے پر درخواست کی، اے خدا ہماری مدد کر، مصری آ رہے ہیں۔ خدا نے اسے یہ کہتے ہوئے ڈانٹ دیا، موسیٰ تم کیوں مجھ سے درخواست کر رہے ہو؟ حکم دو اور بحر کلزم تقسیم ہو جائے گا۔ آپ کے لیے دعا کے کچھ اوقات ہوتے ہیں، لیکن آپ کے لیے کچھ ایسے بھی لمحات ہوتے ہیں جب آپ کو حکم دینا ہے۔ آپ کو اپنے خلوت خانے کے ذریعے لازمی دعا کرنی چاہیے، لیکن جب آپ میدان جنگ میں نکل کر آئیں تو آپ تخلیق کرنے والے کلمے کہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب آپ مسیح خداوند کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ حکم دیا۔ وہ تمام رات دعا کرتے، لیکن جب وہ پہلی صفوں میں آتے تو وہ حکم دیتے کہ لوگ شفا پائیں۔ انہوں نے سمندر کو پرسکون ہونے کا حکم دیا، انہوں نے ابلیس کو نکل جانے کا حکم دیا۔ ان کے شاگرد بھی بالکل ایسا ہی کرتے تھے۔ پطرس رسول نے بھکاری کو حکم دیا، سونا اور چاندی تو میرے پاس نہیں ہے، پر جو کچھ میرے پاس ہے میں تمہیں دیتا ہوں، یسوع مسیح کے نام میں کھڑا ہو جا۔ پطرس نے ایک مردہ عورت کے جسم کو حکم دیا، اٹھ جا۔ پولوس رسول نے لسترا میں لنگڑے کو حکم دیا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جا۔ اس نے تخلیق کے کلمات کہے۔ بائبل بیماروں کو شفا دینے کے لیے کہتی ہے۔ یعقوب کے خط میں بائبل کہتی ہے، ایمان کی دعا بیمار کو بچائے گی۔ خدا صاف طور پر ہمیں بیمار کو شفا دینے کے لیے کہتا ہے، لہٰذا میں اپنے چرچ میں جیسا کہ روح القدس میری رہنمائی کرتا ہے بیماروں کو شفا دیتا ہوں۔ میں صرف ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں اور دعویٰ کرتا ہوں، تم شفا پا چکے ہو، اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ۔ اور میں مختلف قسم کی شفاؤں کو پکارتا ہوں اور درجنوں اور سینکڑوں کے حساب سے لوگوں نے شفا پائی ہے۔ چند ماہ گزرے، میں ایک یورپی ملک میں عبادت کروا رہا تھا۔ ایک شام عبادت میں اس جگہ پر 1500 لوگ آئے ہوئے تھے اور عین میرے سامنے ایک عورت پہیوں والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ ایسی بری طرح سے مڑی ہوئی تھی کہ میں غم زدہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، خداوند تم نے اسے میرے سامنے کیوں بٹھا رکھا ہے؟ میں اسے دیکھنے کے بعد اپنے ایمان کو استعمال نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا جب میں کلام سنا رہا تھا تو میں کوشش کرتا رہا کہ اس کی طرف نہ دیکھوں۔ میں ایک جانب دیکھتا اور پھر اچانک مڑ کر دوسری جانب دیکھنے لگتا، کیونکہ اسے دیکھتے ہی میرا دل افسردہ ہو جاتا۔ پیغام کے آخر میں روح القدس نے اچانک میرے دل میں کہا، نیچے جاؤ اور اسے اوپر اٹھاؤ۔ میں نے جواب دیا، پیاری روح، کیا تم سچ مچ یہ کہتے ہو کہ میں نیچے جاؤں اور اسے اوپر اٹھاؤں؟ وہ تو اس بری طرح سے مڑی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں مسیح خداوند خود ہی اسے اٹھا سکتے ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں خوف زدہ ہوں۔ لیکن روح القدس نے کہا، تم جاؤ اور اسے اوپر اٹھاؤ۔ میں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا۔
نہیں میں خوف زدہ ہوں، لہٰذا میں نے ان قسموں کی شفاؤں کو پکارنا شروع کر دیا جو روح القدس نے مجھے دکھائیں، جو کہ اس عورت کے علاوہ دوسرے لوگوں میں وقوع پذیر ہو رہی تھی۔ پہلے ایک اندھی عورت نے شفا پائی، وہ اس قدر خوف زدہ تھی کہ جب میں نے اس کی شفا کو پکارا اور جیسے ہی اچانک اس کی آنکھیں کھلی وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ پھر اس پورے آڈیٹوریم میں لوگ شفا پانے لگ پڑے۔ میں مسلسل شفاؤں کو پکارتا رہا لیکن روح القدس مجھ سے کہتا رہا، نیچے جاؤ اور اسے اوپر اٹھاؤ۔ میں نے جواب دیا، باپ وہ اس قدر مڑی ہوئی ہے اور میں خوف زدہ ہوں۔ عبادت کے آخری لمحات میں میں نے اپنی ہار مان لی، اور جب پاسٹر صاحب نے تمام لوگوں کو کھڑے ہو کر اختتامی گیت گانے کو کہا، میں نیچے گیا اور آہستگی کے ساتھ کہا تاکہ لوگ مجھے سن نہ لیں، محترمہ اگر تم چاہو تم اس کرسی سے باہر آ سکتی ہو۔ پھر میں کھڑا ہو کر جلدی سے چل پڑا۔ جب میں مڑا تو تمام لوگوں نے چیخنا اور تالیاں بجانا شروع کر دی، کیونکہ اس عورت نے اپنی پہیوں والی کرسی سے باہر قدم رکھ کر چبوترے کے ارد گرد چلنا شروع کر دیا تھا۔ میں بیوقوف تھا، کیونکہ اگر میں اسے شروع میں ہی اوپر اٹھا دیتا تو اس عبادت میں خدا ان کا بہت سا جلال لا سکتا تھا، لیکن میں خوف زدہ تھا۔ بہت سے لوگ مجھ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا میرے پاس ایمان کی نعمت ہے یا شفا کی نعمت ہے۔ میں نے اپنے دل میں تلاش کیا ہے لیکن اب تک میں نے اپنے آپ میں کوئی نعمت نہیں پائی۔ میرا خیال ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ تو روح القدس ہی ہے جس کے پاس نعمتیں ہیں تمام نو کی نو۔ وہ ہم میں سکونت کرتا ہے اور مجھ میں بھی۔ روح القدس میرے وسیلے سے اپنا آپ ظاہر کرتا ہے۔ میرے پاس تو ایک بھی نعمت نہیں ہے، صرف روح القدس ہے اور میں اس کا حکم مانتا ہوں اور اس میں ایمان رکھتا ہوں۔ میرے پاس کس قسم کی نعمت ہے؟ میرے پاس جو ایک نعمت ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں، دلیری کی نعمت۔ دلیری کی اس نعمت سے ہم صرف ایمان پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد روح القدس ہمارے پیچھے آئے گا۔ بائبل ہرگز یہ نہیں کہتی کہ نشان تمہارے آگے آگے جائے گا، بلکہ بائبل کہتی ہے کہ نشان تمہارے پیچھے آئے گا۔ آپ کو آگے جانا ہے تاکہ نشان آپ کے پیچھے آ سکے۔ سینے کے اصول پر کار بند رہیں تو زندگی میں اپنے ایمان کے رستے پر نشان کے بعد نشان کا مشاہدہ کریں گے۔ آپ کے اندر ہی وسائل موجود ہیں اور اب آپ ان عناصر کو جانتے ہیں جن کو سینے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنے ایمان کو قابل عمل بنا سکیں، صاف اور واضح مقصد اور منزل حاصل کریں۔ ایک خواہش رکھیں جو کہ نقطۂ جوش تک ہو۔ پھر جب تک آپ اعتقاد اور یقین دہانی حاصل نہیں کر لیتے دعا کریں، اور پھر جس بات کے لیے آپ کو یقین دہانی مل گئی ہے اس کے لیے کلام کرنا شروع۔